ये 8 नर और मादा हैं, दो भेड़ की किस्म से और दो बकरी की किस्म से। ऐ नबी, इनसे पूछो कि अल्लाह ने इनके नर हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। इसको हाईलाइट करें। ऐसी फरसूदा रस्में और बिदात, इनका इलाज क्या है? नब्बेओनी बेइल्म। इल्म से पहले लोग ऐसे काम करते हैं। देखिए, हम उनकी चीजें पढ़ रहे हैं ना। आज हमारे कल्चर में भी ऐसा बहुत कुछ है। कभी कुंडे भरते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोई पूछे कहते हैं दादी अम्मा ऐसा करती थी। और क्या फर्क पड़ता है? पीला जोड़ा दुल्हन को पहनाते हैं, क्या बड़ा फर्क पड़ता है? हालांकि याद रखिए कि हर रस्म अपने साथ दूसरे कल्चर को लेकर आती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप कहीं कोई पौधा लगा देखें तो आप कहते हैं ये पौधा मेरे घर चले, मुझे अच्छा लगेगा। आप जो ही वहां से वो पौधा निकालेंगे ना, उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी भी आ जाएगी और वो मिट्टी आपके घर तक पहुंचेगी। हर रस्म, चाहे हमने हिंदुओं से ली, नसारा से ली, यहूद से ली, उनके साथ उसका कल्चर आया। और एक और जुमला लिख लीजिए कि हर रस्म की बुनियाद में अकीदा होता है। मिसाल दूंगी, अब इस पे कोई लंबा चौड़ा सोचिएगा ना, लेकिन सिर्फ आपका शोर बेदार करने को, क्योंकि आज तो हम वो सोच के नहीं करते। लेकिन मसलन आप देखिए कि हमारे कल्चर में भी अब आम हो गया, इंडिया में रहते और लोगों को देखते हुए, कि शादी से पहले दुल्हन को पीला जोड़ा पहनाते हैं। अब आप किस सोच से पहनाते हैं, इसको आप छोड़ें, अपने ऊपर रखें, लेकिन इसकी असल क्या है? वो लोग क्यों पहनाते हैं? वो कहते हैं कि पीला रंग बहार की देवी को खूबसूरत लगता है, शुभ होता है, और बहार की देवी जब किसी को पीले रंग में देखती है तो उसको वो बरकत देती है। ये बच्ची जब पीला जोड़ा पहनेगी तो इसकी बरकत से ये घर बसा रहेगा। अब आप मुझे बताइए, कुरान क्या कहता है कि बेघरों को बसाना किसी देवी के हाथ में कि अल्लाह के हाथ में? अब वो पीला जोड़ा आपने पहन लिया, आपको तो नहीं पता, लेकिन पीछे से उनका खानदान का एक अकीदा आ गया ना। और इस तरह की बीसियों चीजें अगर इस वक्त इस पे खोलने लग जाओ तो हम आगे नहीं जा सकते। तो किसी भी रस्म को लेने से पहले देखिए कि हो क्या रहा है। फिर एक और चीज भी होती है, बाज दफा जब लोगों को मना करें, कहते क्या फर्क पड़ता है ना, अब डोंट बी टू पिकी और डोंट बी टू स्टेंजी लाइक दिस एंड दैट। तो आप देखिए कि बिदत और रस्म दोनों चीजों को साथ समझ ले, क्योंकि अब आखिर तक यही मौजू चलने वाला है। बिदत क्या होती है? जो दीनी मामलात में इजाफे होते हैं, सवाब समझ कर वो काम करना जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, ठीक है, रिलीजियस मैटर में वो काम कर लेना जो इस्लाम में नहीं थे। रस्म क्या है? दुनियावी मामलात में वो काम कर लेना जो अल्लाह के नबियों और नेक लोगों से साबित नहीं थे। ओवरऑल दोनों को लेके अपने ऊपर एक मिसाल लेते हैं। अल्लाह ने क्या कहा सूरत मायदा के शुरू में आपको और मुझे? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम पर अपना दीन पूरा किया। इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। प्रोफेट सल्लम हमें सिर्फ नमाज का तरीका सिखाने के लिए नहीं आए थे, फिर तो एक महीने में चले जाते। अल्लाह के नबी सल्लम हमें सिर्फ रोजा या हज नहीं सिखाने आए थे, बल्कि 3 से ज्यादा दफा गालिबन कुरान में ये आयत है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की सूरत में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है। इस्लाम और मुसलमान सिर्फ जाय नमाज पे खड़े होकर शुरू नहीं होता, पूरी जिंदगी में चलता फिरता मुसलमान अल्लाह का नुमाइंदा होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की शादियां की, अपनी भी की, आपके सहाबा की भी हुई, ये मेरे और आपके लिए रोल मॉडल था। अब आप और मैं जब इसको बदलते हैं तो क्या होता है, इसको एक मिसाल से समझिएगा। कोई खानदानी औरत ये पसंद करती है कि उसकी बहू उस खानदान में किसी और का बच्चा ले आए, हो बच्चा किसी और का, और वो कह देने ये तुम्हारे बेटे का। हम तो खौल जाएंगे, मुमकिन ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि तौबा इस्तग़फ़ार, इन्होंने मेरे खानदान में किसी और को डाल दिया। या आप देखिए कि आप ब्लेंडर को काम करता ना देखें तो उसमें जाके इस्त्री का तार लगा दें तो ब्लेंडर काम करेगा? नहीं करेगा ना। बस यही काम बिदात और रस्मों के साथ हुआ। आज हमने इस्लाम की रिचुअल्स को तो फिकी बहसों में पर उलझा दिया, और तर्ज जिंदगी को वही बात है कि वजह में हो तुम नसारा और तरीकों में तुम हनूद, और तुम वो मुसलमान हो जिसको देखकर शर्माए यहूद। आज हमारे लाइफस्टाइल को देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। ऐसे लगता है कि इस्लाम मुफलिस और कलाश था, ना इसने जीना सिखाया ना पहनना सिखाया। हम किसी के 3-4 लोगों के कपड़े पहन लें, किसी की कमीज ले लें, किसी का दुपट्टा ले लें तो हमें कितनी शर्म आए। तो जब हम तर्ज जिंदगी दूसरों का लेते हैं तो चलते फिरते हम लोगों को मैसेज देते हैं कि सॉरी वी आर हैंड टू माउथ मुस्लिम्स, और जब कोई मना करे तो कहते हैं क्या हरज है, किसका दिल टूटा। अब आप अगर इन आयतों को बाद में जाके आराम से भी पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो बातें ऐसी बेवकूफी वाली लग रही हैं। ये औरत ना खाए, ये मर्द ना खाए, इस जानवर की पीठ पे ना बैठो, इसको दूध ना पियो, इसका ना करो। तो हम होते तो कहते भाई किसका दिल टूट रहा है इससे, आज कोई काम करे ना ऐसा, तो लोग कहते चलो क्या है थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। जिस चीज को हम इशू नहीं समझते, अल्लाह ने उसको इतना बड़ा इशू किया कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में रख दिया। तो किस है मुख्तसर बात क्या कि किसी कौम का तर्ज अमल या उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका उसके क्रीड और उसके अकीदे के मुताबिक होता है। वो लोग अपने अकीदे को नहीं छोड़ते, तो मैं और आप कैसे उनकी बातों को ले सकते हैं? तो जब कभी ऐसी बात हो तो कम अज कम खामोश हो जाए, बहस नहीं करनी चाहिए इन बातों पे, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू मेरे लिए अच्छा कर। लेकिन क्या आज हम सबका हाल नहीं है? हमने आज सही दीन पे अमल करने वाले को क्या कहा? ये वहाबी होगा, अच्छा ये फुलां होगा, ये कैसे दीन है? हमने अपने दीन को इतना पीछे डाल दिया कि वही बात मौलाना हाली का एक शेर आपने सुना होगा कि जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज पर देश में गरीबुल गुरबा है। क्या आज आपको इस्लाम गरीबुल गुरबा नहीं दिखता? क्या आज मैं और आप अगर इस इस्लाम को देखें, सच्चा इस्लाम जो अमल करे लोग कहते हैं ये तो बोरिंग है, हालांकि असल इस्लाम वही था कि जिसको हमने लेना है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा कर दे। अगर आज हम सुन्नतों को रस्मों के ऊपर कुर्बान करें, हमारी मर्जी कल क्यामत के दिन अल्लाह का नबी हमसे पूछ लेगा कि मैंने तो तुम्हें एक मुकम्मल दीन दिया था, तुम पता नहीं किन चीजों में लग गए, और आज हम अपने आप को इस चीजों से जब तक दूर नहीं करेंगे हम किताब पे नहीं आएंगे। आप अभी तो बैठे ना बड़े मुतमईन होके, क्योंकि रमजान में शादियां नहीं होती, ईद के बाद शादियों का मौसम। मैं आपको बुरी बात नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे कल से मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जो कल हमने थोड़ी सी जिक्र किया कि अच्छा आप बाद में भी कुछ करते हैं, तो लोगों की डिमांड और मैसेज और दिस एंड दैट कर रहे हैं कि जी हमें बाद में भी पढ़ना है। अब जितने इरादे कर रहे हैं, जिसको कहने जी मुसम्मम इरादे भी है ना, जब तक खुद को उस पर पहले से बांध के दिल में नहीं रखेंगे ना, कितनों के इरादे रमजान के बाद की शादियों की नजर हो जाएंगे, फिर मेहंदियां, फिर उपटन, फिर तैयारियां, फिर पाकिस्तान का चक्कर, फिर इंडिया का चक्कर, फिर इधर उधर, और वो सब जज्बे जो रमजान में उभरते हैं ना वो बाद में ठंडे होते हैं, फिर कहते हैं वो बस वो शादी की तैयारियों में लग गए थे। ये रस्म और रिवाज है जिन्होंने आज इस किताब से उम्मत को रोका हुआ है। आज मेरी और आपकी जिंदगी भी सिंपल होती ना अगर अल्लाह के नबियों वाली, तो हम भाग रहे होते दीन में, पर हमारे कंधों पे तो इतने काम है। अभी तो हमने मेहंदी की प्लेट टेस्ट जानी है, अभी तो थीम मैरिजेस होनी है, अभी तो हमने क्या कुछ करना है। तो उम्मत वसत को ये सूट नहीं करता, बाकी करें शौक से करें। मेरे और आपके पास अभी काम बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें दीन के असल रुख पे रखने वाला और रहने वाला बना दे। फिर उन्हीं की कुछ मजीद बातों को सामने किया गया, और इसी तरह दो ऊंट की किस्म से है और दो गाय की किस्म से, पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का तुमको हुक्म दिया था, या इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर, फिर नोट कीजिए दोबारा इल्म की बात आ गई, ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। आज बेइल्म लोगों ने लोगों को मुतमईन कर दिया, कहते हैं हमें चंदा देते रहो और जो मर्जी करो तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तो अल्लाह ताला हमें बगैर इल्म के बात करने से महफूज रखे। इन्नल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम कौम को राह रास्त नहीं दिखाता। क्या कहो फिर, वही की पैरवी। बड़ी खूबसूरत आयत है, कुल्ला जिदु फी मा उही इलैया मुहर्रमा, ऐ नबी इनसे कहो जो वही मेरे पास आई है, इसमें तो मैं कोई चीज इसमें ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो। यानी ये जो जिसको तुमने हराम कह दिया कि ये बाबा जी की कब्र पे छोड़ दिया जानवर, तो ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, हालांकि मेरे इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज हराम नहीं। क्या हराम है इस्लाम में? तीसरा मुकाम है सूरत बकरा, फिर सूरत मायदा, और अब यहाँ सूरत अलानाम में तीसरी बार सेम आयत आ रही है थोड़े से अल्फाज से फर्क से, इल्ला यकून मैतन अव दमन दमम मसफूहन अव लहम खिंजीर, का मेरी शरीयत में ये बातें तो हराम नहीं है जो तुमने की है, हाँ मगर क्या हराम है? ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सुवर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर जिबा किया गया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बगैर इसके कि वो हद जरूरत से तजावुज करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और अहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार कर ली उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम किए गए थे। हमारी शरीयत आसान है, यहूद की शरीयत असलन भी कुछ सख्ती, कुछ इनके मुफ्तियों ने फतवे दे देकर और ऐसे जुमले बोल बोल कर दीन को और सख्त कर दिया था कि जानवर जिनके नाखून है वो इन पर हराम थे। जैसे आप देखिए कि मुर्गी के नाखून होते हैं ना, बतख के होते हैं, इनकी शरीयत में इन्होंने हराम कर ली थी ये चीजें, और गाय और बकरी की चर्बी भी हराम कर ली, सिवाय इसके जो उसकी पीठ या उसकी आंतों से लगी हो या हड्डी से लगी रह जाए, یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی ان کو، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ جب لوگ دین کے معاملے میں بہت ہی فقہی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں نا، تو اللہ دین کو سخت کر دیتا ہے۔ یہی حالات بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے تھے۔ اب اگر وہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ دیکھیے، اپنے شرک کا الزام اللہ پہ ڈالتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے ابلیس کا قصہ، اس نے بھی یہ کیا تھا، اپنی گمراہی کا ذمہ اللہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے محفوظ رکھے۔ یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری کیا سرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو، تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کیوں نہیں دی اللہ نے سب کو ہدایت؟ سمپل سا جواب اس کا بتائیں گے، کیونکہ سب نے مانگی نہیں۔ دیکھیے، جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ پانی کا گلاس بھی آپ اس کو ہی دیتے ہیں جو مانگتا ہے، اور آپ کسی کو زبردستی دیں بھی اور نہ پینا چاہے تو آپ دیں گے؟ تو ہدایت کا تعلق طلب سے ہے۔ اگر ہدایت کی طلب نہیں تو اللہ آپ کو نہیں دے گا، اور ہدایت بڑا غیور مہمان ہے۔ آپ کے دروازے پہ نوک کرتی ہے ہدایت، جیسے آج کل ہمارے گھروں پہ، دروازوں پہ یہ قرآن نوک کر رہا ہے۔ جب دل کا دروازہ کھولتے، یہ ہدایت ایک بہت اچھے مہمان کی طور پہ ہمارے دل میں آ کے بیٹھ جائے گی، اور پھر کبھی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ہم دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، ایک آدھ دفعہ نوک کرے گی پھر چلی جائے گی، کیونکہ اس کو ایسے گھروں میں نہیں جانا جہاں کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ کیوں نہیں پسند کرتے ہدایت کو؟ اس کا جواب اگلے حصے میں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، خواہش نفس۔ ان سے کہو، لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ہی ان چیزوں کو حرام کر دیا، پھر اگر وہ شہادت دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ 3 سیکنڈ تک غور کریں گے۔ اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اب سیدھا سادہ دین، یہ آیت اگر ایک آیت آپ کسی کو اسلام کا وسیع میسج دینا چاہے نا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو سمرائز کریں کہ اسلام کیا حلال کہتا ہے کیا حرام، تو یہ آیت اس کے اندر بڑی خوبصورت ہے۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پہلی چیز، سب سے بڑی چیز شرک۔ پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس پہ آگے بات ہوگی انشاءاللہ بہت۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ایبارشن سے رکنے کی بات ہے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، یعنی اس سوچ سے کہ زیادہ بچے ہو گئے تو کھائیں گے کیسے، 2 بچے خوشحال گھرانا، یہ جملہ امت وسط کا نہیں ہو سکتا۔ امت وسط کو تو میکسیمم اولاد پیدا کرنی چاہیے۔ چلیے، باقی چیزوں میں ہم کم ہیں تو نفری میں تو زیادہ ہو جائیں، اور مین پاور از دی بگیسٹ پاور آج کے دور میں بھی۔ تو لہٰذا کہا کہ بچوں کو قتل نہ کرو، اور بے شرمی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور آپ دیکھیں، جہاں قتل اولاد کی بات ہے نا، وہاں بے شرمی کی باتیں آئیں، چاہے خواہ کھلی اور چھپی ہو۔ اور حقیقت ہے کہ جب سے یہ چیزیں ایجاد ہو گئیں جس سے آپ پریکاشنس لے سکتے ہیں یا بچے پیدا نہ ہو، تب سے فحاشی اور زنا عام ہو گیا۔ کیونکہ ایسی چیزیں ہیں، اپنی خواہشات بھی پوری رکھو اور اپنے آپ کو سیکیور بھی رکھو۔ فرمایا، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو۔ اور ابارشن کیا ہے؟ بچے کا قتل ہے۔ اور جہاں دیکھیے زنا ہوگا وہاں قتل عام ہوگا۔ بعض دفعہ لڑکے لڑکیوں کو بعد میں قتل کر دیتے ہیں، بعض دفعہ لڑکی کے گھر والے اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ لڑکا لڑکی سونے والے بچے کو قتل کر دیتے ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتے اور ابھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو قتل، زنا اور اسی طرح سے بے حیائی، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، ایک ہوگا تو دوسرا بھی وہاں ہوگا۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے، वन्नहा ज़सिराती मुस्तकीमा, यही मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्तों में ना चलो। वो इसके रास्ते से तुमको हटाकर तुमको प्रगंदा कर देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है वो बात जिसकी तुमको वसीयत की जाती है ताकि तुम बचो। कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने बता दिया कि जब एक रास्ता इंसान छोड़ता है हिदायत से दूर होते हुए, तो दूसरे रास्ते खुद ब खुद बिखर जाते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर लेकर चले। तुम आते ना मूसल किताब तमामन, फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर जरूरी चीज की तफसील और सरासर हिदायत और रहमत थी। है ना दुख की बात, जिस कौम को अल्लाह ने इतनी खूबियों वाली किताब दी थी, आज उस कौम का हाल देख लीजिए। याद रखिए, जब लोग अपनी किताबों पे अमल नहीं करते ना, तो बड़ी से बड़ी अच्छी किताब भी काम नहीं कर पाती। आज उम्मत मुस्लिमा के साथ यही कुछ हो रहा है। जो किताब आज मेरे और आपके पास है, क्या ये वो किताब नहीं है जो लोगों के मुकद्दर को बदल दे? इसीलिए फरमाया और इसलिए बनी इसराइल को दी गई थी कि शायद लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। हाय, हम कहते हैं उनको इतनी अच्छी किताब मिली, का नहीं, फिक्र ना करो। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, और इसी तरह ये किताब हमने नाजिल की है एक बरकत वाली, बस तुम इसकी पैरवी करो और तकवा की रविश इख्तियार करो, बईद नहीं कि तुम पर रहम किया जाएगा। अब इस किताब की बरकतों को इंशाल्लाह हमने महसूस करना है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो गिरोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर तक न थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे। अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर ये किताब नाजिल की गई होती तो हम इनसे ज्यादा रास्त रो साबित होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील रोशन और हिदायत और रहमत आ गई। अब इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयात को झुटलाए और इनसे मुंह मोड़े? जो लोग हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं, इन्हें इस रूगरदानी की पादाश में हम बदतरीन सजा देकर रहेंगे। क्या अब ये लोग इसके मुंतजिर हैं? जरा इन सवालों की शिद्दत को नोट कीजिएगा। यानी जो इस किताब से फायदा नहीं उठाते, हिदायत को नहीं लेते, पढ़ना पढ़ाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो इस बात के इंतजार में है क्या कि फरिश्ते इनके सामने आ खड़े हों? कौन से फरिश्ते? मौत के फरिश्ते, या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बात सरीख निशानियां नमूदार हो जाए। देखिए, जब कोई किसी अटेंडेंट की बात नहीं मानता तो लोग कहते हैं, अच्छा अब आप ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब खुद आ जाए। कुछ लोग वाकई ये रवैया रखते हैं कि जब तक अल्लाह खुद हमारे सामने नहीं आएगा हम अमल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में से बचाए। फरमाया, जिस रोज तुम्हारे रब की बात मखसूस निशानियां नमूदार हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान कुछ फायदा न देगा जो पहले ईमान न लाया हो, क्योंकि ईमान का एक वक्त होता है, या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। ए नबी, इनसे कह दो, अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। अब आखिरी मसाइल में एक मसला, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम वकानु शिया, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बताइए जरा कौन से टुकड़े हैं? कई किस्म के तो टुकड़े हैं आज दीन के नाम पर, अल्लाह ताला महफूज रखे। और गिरोह गिरोह बन गए, गिरोह बंदी, फिरका वारियत, यकीनन इनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं। हम भी दिल की गहराई से कह दें, जो फिरका वारियत का नाम लेगा हमारा उससे कुछ वास्ता नहीं, जो अपने नाम के साथ कुछ भी लगाएगा मुसलमान के सिवा हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। फरमाया, इनका मामला तो अल्लाह के सपुर्द है, वही इनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। इसके बरक्स हाईलाइट कीजिएगा अल्लाह की रहमत का इजहार, मन जा बिल हसनति फलहु अश्रुम सालिहा, जो अल्लाह के हजूर नेकी लेकर आएगा, एक नेकी सिर्फ, ओनली वन, इसके लिए 10 गुना अजर है। ये है कतब अला नफ्सिहि रहमा, और जो बदी लेकर आएगा इसको इतना ही बदला दिया जाएगा जितना इसने कसूर किया है, और किसी पर जुल्म न किया जाएगा। नबी सल्लम ने सहाबा से कहा कि एक नेकी पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं और एक गुना पर एक गुना लिखा जाता है, इंसाफ क्या था कि गुना पे भी 10 हो? आपने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स, या आपने कुछ और कलमा बोला, कि जिसकी नेकियां 10-10 हैं, ये 10-10 होने के बावजूद उसके गुना नेकियों पे भारी पड़ गए। यानी जिसकी इकाइयां उसकी धाइयों पे गालिब आ गई वो तबाह हो गया। मतलब ये कि हम एक एक करके 10 गुना कर लेते हैं और उसके मुकाबले में एक नेकी भी नहीं कर पाते। और आपने फरमाया, ऐसा तो उसी के साथ होगा जो दिल से सोचे बैठा है कि मुझे जन्नत नहीं लेनी। इतनी लूज मार्किंग कर रहा है हमारा रब, इसके बावजूद अगर लोग आग में जाएंगे तो अल्लाह का इसमें कोई कसूर नहीं। कुल इन्नी हदानी रब्बी ला सिरात मुस्तकीम, ए नबी कहो मेरे रब ने यकीनन मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं। क्या आप इसकी गवाही देते? हमारा दीन सीधा दीन है ना, कोई हैंकी पैंकी तो नहीं है। करो क्या फिर? इब्राहिम का वो तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुश्रिकों में से न था। तो मेरे और आपके दिल की पुकार अब क्या होनी चाहिए जो अल्लाह के नबी के जरिए कहलाया गया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो मेरी नमाज और मेरी इबादत के तमाम तरीके और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए। खुद अपने दिल से हम खुद को कहें मेरा सब कुछ मेरे रब के लिए। आप देखिए जब कोई फौत होता है तो हम कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप उसको अपने साथ लेकर के इन्नी लिल्लाह, मैं अल्लाह की हूँ, मैं अल्लाह वाली हूँ और मुझे उसी की तरफ पलटना है, फिर आप देखिए आपको कितनी खुशी महसूस होगी। ला शरीक लहू, इसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझको हुक्म दिया गया और सबसे पहले सरे ताज झुकाने वाला मैं हूँ। قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا, कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं? पूछिए जरा जाके किसी से, चाहते हो तुम्हारा रब कोई और बन जाए? नहीं, हालांकि वही हर चीज का रब है, हर शख्स जो कुछ कमाता है इसका जिम्मेदार वो खुद है। और बात यह है कि इसको अलर्ट कीजिएगा, वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के बोझ को नहीं उठाता। आज किसी को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज ना करें क्योंकि कल वो हमें खुश नहीं करेगा। ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, इस वक्त वो तुम्हारे इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ, वही है जिसने तुमको जमीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज्यादा बुलंद दर्जे दिए। क्यों दिए? नोट कीजिएगा, आप देखते हैं ना किसी का घर आपसे बड़ा है, किसी के मियाँ की जॉब आपके मियाँ की जॉब से बड़ी है, तो हम कहते हैं हाय क्यों मिला? तो अल्लाह ताला कहते हैं लिया ब्लुवाकुम फीमा आताकुम, ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें उसमें जो तुमको दिया। नेमतों को अल्लाह ने आजमाइश कह दिया। इन्ना रब्बक सरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब सख्त सजा देने वाला है। वा इन्नहु लगफूरुर रहीम, और वो बख्शने वाला और मेहरबान भी है। क्या पता चला कि ज्यादा नेमते होना हिसाब को लंबा कर देगा। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझें। आप यहां से पाकिस्तान ट्रेवल करते हैं या इंडिया जाते हैं, जितना ज्यादा लगेज लेके जाएंगे उतना हैसल ज्यादा होगा ना, वजन भी करना, उठाना भी, रखना भी, और एक्स्ट्रा है तो पे भी करना है। ये है लिया ब्लुवाकुम फी माता को, हम एक स्टोर में से भी एक छोटी सी चीज भी खाली खुद बगैर पे किए नहीं उठा सकते। तो इस दुनिया में अल्लाह की नेमतों को हम बगैर पे कैसे ले सकते हैं? अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन नेमतों को पे करने वाला बना दे। आज का यही टारगेट था। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन।